नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। माँ गंगा की शरण में आप सब आए हैं, जो भगवान के चरणों से निकली हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर भगवान की पावन लीला का श्रवण करना यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह देश परम पावन है और काल भी कृष्ण का ही है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण अपने इस नाम के विषय में स्वयं गीता में कहते हैं, जस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं लोक में और शास्त्र में सब जगह मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यह पुरुषोत्तम महीना कृष्ण के लिए है। हमारे वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक चौथा वर्ष 13 महीने का हो जाता है। एक महीना फालतू मिलता है। फालतू से तात्पर्य ऋषियों ने इसको ऐसे निश्चित किया कि 12 महीना तो ठीक है अपने काम धंधा के लिए मिलता है, लेकिन चौथे वर्ष में 30 दिन अधिक होता है तो उसको ऋषियों ने भगवान कृष्ण के भजन के लिए निकाल दिया कि एक महीना अब केवल पुरुषोत्तम का भजन करना है और कोई काम धंधा नहीं। क्योंकि और 3 बरस लगातार 4 बरस भी हर एक महीने में दुनियादारी का काम करते ही रहते हैं, एक महीना तो भगवान ने दिया है एक्स्ट्रा, तो अपनी भक्ति करने के लिए दिया। अंग्रेज लोग उसको 31-31 दिन का महीना करके सेट कर लेते हैं, लगभग 27-28 दिन वैसे हो जाता है उनका 4 बरस में, तो वो 12 महीने में ही सब सेट कर लिए। लेकिन हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने इसको भगवान की भक्ति के लिए अलग रखा है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कोई कोई इसे अधिक मास कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है पुरुषोत्तम मास, भगवान श्री कृष्ण का महीना, अर्थात उनके लिए 30 दिन रखा है। तो उसमें श्रीमद् भागवतम सुनना, गंगा जी के तट पर निवास करना, स्नान करना और ऐसे तीर्थ में भगवान के धाम में जुट करके भगवान की लीला सुनना, यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा उपयोग है। और आप सभी केवल एक तीर्थयात्री नहीं हैं, साधक हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, मंगला आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं और कई तरह से नियम पालन, जैसे एकादशी उपवास है, श्रीमद् भागवतम सुनना रोज करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करते हैं, तो यही है साधक। इसी का नाम है साधक। साधना में है ही, पर पुरुषोत्तम महीने में माँ गंगा के तट पर निवास मिला और भगवान की कीर्ति सुनने का यह बहुत अच्छा है। तो कई लोग आज पहुंच रहे हैं, कोई कल पहुंचे थे, तो लोगों को शरण देना चाहिए। तो यहां आज पानी और धूप दोनों का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बैठना चाहिए। आज जुगल गीत का प्रसंग है, उसकी आवृत्ति करेंगे। रामचरित मानस में जो चौपाइयां हैं उन चौपाइयों के ही तर्ज पर ये सब श्लोक है, अर्थात इन श्लोकों के आधार पर वे चौपाइयां हैं। इसको बड़े अच्छे स्वर में गाया जा सकता है, ये गीत है भी जुगल गीत। दो दो श्लोकों में भगवान की एक लीला गाई गई है, दो श्लोक में एक लीला, इसीलिए इसको युग्म गीत या जुगल गीत कहते हैं। हम लोग पहले इसको गाएंगे, आवृत्ति में गाना ही है। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः श्रीबादरायणीरुवाच। गोप्यः कृष्णे वनं जाते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासराम्। श्री गोप्य उचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुः अनुस्वार वेणु वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्यैरयति जत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सहसीधैर्व्योमयान विस्मितास्तदुपधार्ज सलज्जः काममार्गण समर्पितचेतः कस्मलं ययूरपस्मृतलीव्यः रामायण गाने वाले इसको बहुत अच्छा से गा सकते हैं, लेकिन उनको संस्कृत का उच्चारण जानना चाहिए, कहाँ रुकना है कैसे करना है। एक बार फिर गा दें, मृदंग बजाए करताल बजाए। रामायण की चौपाई कई रागों में गाई जाती है। भगवान श्याम सुंदर अपने बाएं अपने ग्रीवा को कपोल को बाएं बांह की ओर ऐसे किए हैं बांसुरी बजाने में, उसी का वर्णन गोपियां कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान श्रीकृष्ण वन में चले जाते थे गाय चराने के लिए तो श्री गोपीजनों का चित्त भी उन्हीं के साथ चल देता था, घर के काम धंधा पर कोई ध्यान नहीं रहता था, याद भी नहीं आती थी कुछ काम करना है घर का है। तो कृष्ण लीला प्रगायन तो चित्त तो चला गया है वृंदावन बिहारी के साथ वृंदावन में, और वे भगवान की लीला को गा रही है। श्री श्री सुखदेव गोस्वामी इसको गाए होंगे कितने अच्छे स्वर में। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलबित भूर धरार्पित वेणु
बलबित भूर
कोमलांगुली वीराश्रित मार्गम गोप्यायति जत्र मुकुन्द
गोप्यायति जत्र मुकुन्द
व्योमयान वनिता सहसीदै विस्मितास्तदुपधार्य काम मार्गण समर्पित चिता
काम मार्गण समर्पित चिता
कस्मलं जयूरपस्मृत हंत चित्र मबला शृणुते दम
हंत चित्र मबला शृणुते दम
हार हास उरसी स्थिर विद्यु
हार हास
नंद सुनुर यो मात जनाना
नंद सुनुर यो मात जनाना
नर्म तो जरी कूजित देनु
नर्म तो
ज वृषा मृग गावो वृंद सुव्रज वृषा मृग गावो वेणु वाद्य हृत चेतसयारा दंत दष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र निवास
निद्रिता
पहिला स्तव का धातु पला सही
पहिला स्तव का
बद्ध बारह परिवार विडम्ब बद्ध मल्ल परिवार विडम्ब परिचित सब लयाली सगोपै गासमावयति यत्र मुकुन्द तरहि भग्न गतया सरितो वै
तरहि भग्न
गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम् स्पृहयति प्रेम व्यपीत भुजास्ति निताप अनुचर समनु वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवा चल भूति
आदि पुरुष
वन चर गिरी ते सुचरती भयति गा सजदाई वन लतस्तरवयात्मनिवेश वन व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाद्या प्रणतभार वितता मधुधारा प्रेम हृष्ट तनव बब्रिषोष्म
प्रेम हृष्ट
दर्शनीय तिलको वनमाला दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गन्ध तुलसी मधुमाते अलीकुले
अलिकुलर लघु गीतमया
अभीष्टम
अलिकुलर लघु गीतम अभीष्टम आद्रियंजरि संधित वेणु सरसी सारस हंस विहंगा
सरसी सारस
चारु गीत हृत चेत सयेत्य हरिमुपासत तेजत चित्ता हरिमुपासत तेजत चित्ता अंत मिलित दृशो धृत मौन सबल सगवतम सविलास सानुसुचिति भृत व्रज देव्य हर्षयं गर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरं भति विश्वम्
जात हर्ष उपरं भति विश्वम्
महदति क्रमण संकृत चेता
महदति क्रमित चेता
मंद मंद मनु गर्जति मेघा
मंद मंद मनु गर्जति
सुहृदमाभ्यवर सत सुमनोधि छाया च विदधत प्रतपात्रम् विविध गोपचरणेषु विदाब्धः
उसका अर्थ जानने पर बहुत आनंद आएगा जो लोग समझते हैं वो लोग इसका अनुवाद वो इसका स्वाद हम करते होंगे कर सकते हैं
विविध गोप चरणे सुविदग्ध
विविध गोप
वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा
हम भगवान वन में चले गए हैं कुछ गोपियां मां यशोदा के पास आकर कृष्ण कथा कह रही कि कैसे बांसुरी बजाते हैं तो मां यशोदा के लिए कह रही
तब सुत सती जदाधर बिंदे
तब सुत सती जदाधर बिंदे
दत्त वेणु रनयत स्वर जाती सवनस्तदुपधार्य सुरेशा
सुरेशा
सत्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा
सत्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा
कवयान तकंधर चीता कस्मलं ययूरनिश्चितता
तो सबके पास पुस्तक है, देख करके सब लोग गाइए। जैसे तैसे ये हजारों लाखों आचार्यों के द्वारा गाया हुआ है और मूल गायिका तो श्री गोपी जन है और महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं।
निज पदाब्ज दलैर ध्वज बाज्र निरजांकुश विचित्र
ललामयी
व्रज भुवः शमयन खुरतोदम
व्रज भुवः
वर्ष्म दूर्ज गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास
व्रजति तेन वयं सविलास
वीक्षणात मन भवे कुजगतिं गमिताल विदामः कस्मलेन कवरं वसनं मणिधरः क्वचिदागणयङ्गः मलयादयित गन्धतुलस्या प्रणयिनानुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन भुज मगायत
जक्षिपन भुज
क्वणित वेणुरव वञ्चित चीता
क्वणित वेणुरव वञ्चित चीता
कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहीण्या
कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहीण्या
गुण गणाण मनुगत्य हरिणो
गुण गणाण मनुगत्य
गोपिकाइव विमोक्त गृहा दाम कृत
थोड़ा बढ़ाइए बढ़ाइए
कुंद दाम कृत कौतुक वेश गोप गोधन वृत जमुनाया सुमिरन गे तब बासो नर्मद प्रणाई नाम विजहार मंद वायु रूप वाचनुकूलम मलयन मलया जस पर सेना बंदिनाष्टम देव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिवार वत्सलो गज गवाम जग गद्र गम्यमान चरण पथि भई कृष्ण गोधन मुते दिनांते गीत वेणुरन गीत वेणुरन गे बीत कीर्ति उत्सव समारु जाति दृशीना नयन पुरश्चिकाश दीप्तयसि दीप्तयति सुहृदाशिषयेश देवति जठर भुरु दूराज देवति जठर भुरु दूराज
भगवान गाय चला करके लौट रहे हैं उस लीला का गान कर रहे हैं
मद विघूर्णित लोचन ईशन
मद विघूर्णित लोचन
ईशन मन दृदाम बनमाली बदर पांडु बदलो मृदु गंगम
बदर पांडु बदलो
कुंडयन कनक कुंडल लाख्या जदुपति वीर बैराज बिहारो जदुपति वीर बैराज बिहारो जमिनी पति वैश दिनांक मुदित वस्त्र उपयास दुरंगम मोचयन ध्वज गवाम दिनता
श्रीशुक उवाच
एवं
व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमि रेहसु तच्चित्तः तन्मनस्का महोदयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम वैयशिक्याम दशमस्कंधे पूर्वार्धे जुगल गीत वर्णन नाम पंचत्रिंशत्तमोऽध्याय पैंतीसवां अध्याय। अंग्रेजी में भी ऐसे ही गिनने की प्रथा है 35। संस्कृत से ही सब सीखे हैं। ये शुरू के दूसरे से पांचवें श्लोक तक एक श्लोक दो श्लोक की आवृत्ति की श्रीबादरायणीर्वाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनु द्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यः निन्युर्दुःखेन वासरान्। यह भी कथा है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो व्याख्या होती है वही कथा है। ये जो आवृत्ति हुई, गान हुआ, ये भी कथा है। ऐसा मान लीजिए पुआ बनाना हो, पूरी बनाना हो, तो आटा सानना भी पुआ बनाना है। ये नहीं केवल कड़ाही में तलना वही पुआ बनाना है, जो पूरी बनाना, उसको सानना, बेलना, ये सब भी उसी का अंग है। तो आवृत्ति और गान यही कथा है, ये समझने चाहिए। पर आज के युग में संस्कृत भाषा सब लोग पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, अतः उसकी व्याख्या की जाती है, तभी हम लोग बेल रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए, धैर्य रखिए। जो कम संस्कृत समझते हैं उनको भी मिलेगा। जैसे अब पूरी बनकर तैयार हो जाए तो खाने में तो सबको आता ही है, कोई उसके लिए कला सीखने की जरूरत नहीं है, कथा में सब समझ जाएंगे। पर इतने सावधान रहना चाहिए, कथा में सोना नहीं चाहिए। अभी भी मालपुआ बनाने के पहले का कार्यक्रम में भी चल रहा है। गोप्यः कृष्णे वनं जाते तमनु द्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यः निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्रीबादरायणीरुवाच भगवान बादरायण के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोप्यः श्री गोपियां कृष्णे वनम जाते। कृष्ण जब वन में चले जाते थे तम उनके साथ अनुद्रुत अति तेज गति से चेतसः उनका चित चला जाता था। कृष्ण लीला कृष्ण की लीलाओं को प्रगायन्त्यः प्रकृष्ट रूप से गाती हुई निन्यु बिताती थी। दुखेन दुख से वासरान दिवसों को। श्री बादरायणी रुवाच कृष्णे वनम याते तम अनु तेन सह द्रुत चेत सह द्रुतम वेगेन गतम चेत जासन ताह किंगतम वनम गच्छन्तं अनुलक्षीकृत द्रुतानि वेगेन तेन सह चलितानि चेतांसि जासन ताह गोप्यः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः दुखेन वासरा निम्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी सुदर्शन और शंखचूर के उद्धार के बाद यह कथा कह रहे हैं। इसके पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोपीजनों के संयोग लीला का वर्णन किए हैं, सुप्रसिद्ध लीला जिसका नाम है रासलीला। रासलीला में रात्रि के समय श्री गोपीजनों का भगवान से मिलन रहता था, रास विहार नृत्य गीत आदि, तो वे बड़े सुख से रात बिता देते थे। रात्रि पूरे ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर भी क्षण भर की तरह बीत जाती थी। सुख के दिन है बहुत छोटे होते हैं। तो रात्रि में वे कृष्ण के साथ रहती थी, बहुत सुखी रहती थी, परंतु दिन में प्रियतम श्याम सुंदर जब वन में चले जाते थे तो बहुत दुख में हो जाते थे। दुख क्या था? कृष्ण का दर्शन न होना, यही दुख था। दुखे न श्री कृष्णा दर्शन जन्य विरह दुखे न, श्री कृष्ण के अदर्शन के कारण जो दुख उत्पन्न होता था, विरह दुख, उसके कारण बड़े कष्ट से वासरा निन्यु निर्यापया मासु, बड़े कष्ट से दिन पूरा करती थी किसी तरह। ऐसा श्रीमद् भागवतम में आया है कि युग शतम सैकड़ों युग के समान वह दिन बीतता था। प्रियतम श्याम सुंदर जब सवेरे जाते थे वन में और शाम को लौटते थे तो श्री गोपियां निरंतर श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहते थे और सोचते थे कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब भेंट होगी, कब भगवान सूर्य अस्त होंगे। वह एक दिन कल्प के समान बीतता था। कल्प है ब्रह्मा जी की आयु को कहते, द्विपरार्ध जिसमें 40 अरब वर्ष ऐसे ब्रह्मा जी का है। चौवन अरब 40 खरब और कितना कोटि वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती, इतनी लंबी आयु। तो श्री गोपीजनों का एक दिन श्याम सुंदर के विरह में इतना लंबा भी इतना दुख में होती थी। श्री कृष्ण के दर्शन के समय भी वे सुख से नहीं रहती थी। जब दर्शन में आंखों की पलक गिरती थी तो उससे भी बहुत दुखी हो जाती थी। पलक का अवधान भी उन्हें असह्य था। अद्भुत प्रेम की मूर्ति है श्री गोपीजन। श्री सुखदेव गोस्वामी पुनः गोपियों का वर्णन करने लगे। तो बीच में उन्होंने दो लीला का वर्णन किया, सुदर्शन के उद्धार की और शंखचूर्ण के उद्धार की। दोनों में भगवान की इस लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया कि वे अपने भक्तों को दुख से मुक्त करते हैं और उन्हें अपना स्वरूप देते हैं, अपने स्वजनों की रक्षा करते हैं। प्रथम लीला में यह दिखाया गया कि भगवान अपने पिताजी की रक्षा किए, नंद बाबा की रक्षा किए, और दूसरे में अपनी प्रेयसी श्री गोपीजनों की रक्षा की शंखचूड़ से। देखिए सुखदेव गोस्वामी का भाव भगवान के प्रति और गोपीजनों के प्रति। लीला का क्रम इस तरह से चल रहा है आंदोलित होते हुए, उन्हें कथा कहते समय श्री गोपीजनों की याद आने लगी। विशेष रूप से कहते रात्रि के समय तो सुख से रहते थे, लेकिन दिन के समय बड़े दुख से। उस समय एक ही आधार रहता था, प्रियतम कृष्ण की लीलाओं का वे गान करते, प्रगान प्रकृष्ट गान, यही दिन भर का काम रहता था। उसी बात को ही कह रहे हैं, गोप्य गोपियां कृष्णे वनम जाते, कृष्ण के वन में चले जाने पर तम अनुद्रुत चेत स, तम अनु श्रीकृष्ण के पश्चात श्रीकृष्ण के साथ ही उनका चेत द्रुत वेग से चला जाता था। ऐसा नहीं था कि बाद में कोई काम धंधा पूरा करके तब कृष्ण का स्मरण करें। कृष्ण जाते थे गाय चराने के लिए, चलस जद बल जा चार अजन कुसुम, उसी समय चित्त भी गोपियों का कृष्ण के साथ चला जाता था। कहां रहता था चित्त? भगवान श्री कृष्ण के किस अंग पर श्री गोपीजनों का चित्त रहता था? चरण कमल पर। विस्वयं ही कहते हैं, चलस जद बरजा चारयन पसुम नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरे सीद तीति न कलिलता मन कांत गच्छति। हे कांत, हे प्रिय, जब आप गाय चराने के लिए चलते हैं उसी समय हमारा चित्त दुख में पड़ जाता है, क्योंकि आपके चरणों में गायों के एक खुर से या दांत से कटे हुए घास लगते होंगे, पत्थर लगते होंगे, ये सोच करके हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है। गोपियां सोचती थी कि हम किस दिन के लिए हैं कि हमारे प्रियतम इतने दुख भोगते हैं। वन में जाना यद्यपि श्री कृष्ण के लिए आनंद की बात थी, और वनवासी मृग हरिण खग तरु लता ये सब श्रीकृष्ण की बात जो होते थे, रात भर उनके लिए कठिन होता था बिताना। हरिण भौरे पक्षी वृक्ष लता ये बेचारे जा नहीं सकते थे, गांव में ब्रज में जा नहीं सकते थे। जब श्रीकृष्ण वन में रहते थे तभी आनंद में रहते थे, श्रीकृष्ण के लीला के साथ, कृष्ण के साथ। तो भगवान को तो सब और देखना है ना, वो तो सबके हैं। तो रात्रि में वे गोपीजनों को सुख देते थे रास विहार आदि के द्वारा, लेकिन वन में रहने वाले तरु लता आदि जहां श्रीकृष्ण दूर दूर तक गोचारण करते थे वहां भी नहीं पहुंच पाते थे रात्रि में। रासलीला में जमुना जी के पुलिन के पास ही रहते थे, और वन में सुदूर प्रदेश में जो गांव गऊएं चराते थे वहां नहीं पहुंच पाते थे। ये सब बहुत दुखी रहते थे रात के समय, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, उनको हम देखेंगे और फूल अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे, वृक्ष आदि भी सोचते रहते थे। वृंदावन के वृक्ष कोई जड़ है, जीव नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, चिन्मय है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डार डार अरुपात में श्री राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्षों का महत्व लोग नहीं जानते हैं। वृक्ष के एक एक पत्ता में एक एक शाखा में राधे राधे का कीर्तन होता है, वो कीर्तन करते हैं। सब लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन बड़भागी लोग जान जाते हैं इस बात को, सुनते हैं। तो भगवान के विरह में वृक्ष और लताएं, खग पक्षी जैसे मयूर आदि, कोकिल और पशु, वन में रहने वाले हरिण आदि ये सब कृष्ण के विरह में रहते थे। इसलिए श्री कृष्ण को वन में रोज जाना ही था, और उनके साथ भगवान ने विविध लीलाएं करते थे, स्वयं आनंद में रहते थे। वन में जाए बिना रह ही नहीं सकते थे, उनको उनसे आनंद था और उन लोगों को कृष्ण से आनंद था, अतः भगवान जाते थे। इसलिए कृष्ण वनम जाते, कृष्ण के वन चले जाने पर उन्हीं के साथ गोपीजनों का चित चला जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह विचार करना कि श्री गोपीजनों का चित्त चला जाता था कृष्ण के साथ, तो उनके चरण तलवे में ही जाया जाता था। यह है अनुराग महाभाव। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरण में दुख हो रहा है, इसका चिंतन करते दिन भर यही सोचते रहते थे क्या आवश्यकता है उनको गाय चराने की, नंद बाबा के यहां कितने सेवक हैं वे जा सकते हैं, या हमारे घर में कुछ लोग हैं उनको सेवक हैं और स्वजन है वे गाय चरा देंगे, इनको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कह नहीं सकती थी नंद बाबा से, तो भेद खुल जाता क्यों क्यों रुक रही हो कृष्ण को वन में जाने से, तो लोक लज्जा की बात थी, कह नहीं सकती थी, परंतु सोचती रहती थी दिन भर इनको गाय नहीं चराना चाहिए, इनके कोमल चरण में दुख हो रहा है। इसलिए तम अनुद्रुत चेत सह श्री कृष्ण के साथ ही उनका चित वन में चला जाता था। वन में चले जाने का मतलब यह ध्वनित हो रहा है कि अपने घर के किसी भी काम में और स्वजन में चित नहीं था। चित तो ये कहीं है, मन तो ये कहीं है, एक समय में एक ही के साथ रह सकता है। और जबकि उन पर बहुत डांट पड़ती थी, जिनके साथ विवाह हुआ है या घर के और देवर हैं सास ससुर, ये सब रोज तबाह हो जाते थे, क्या हो गई जड़ की तरह खड़ी क्यों है, तो कहीं बैठ करके रोती है, आंखों में आंसू है और शरीर में पुलक है, कंठ गदगद, कभी कभी 10-20 गोपियां आपस में जुट करके कृष्ण के से बात कर कृष्ण के विषय में बोलने लगती थी, कभी कोई अकेले कभी कुछ है। तो वे देखते थे प्रतिदिन, पर योग माया की ऐसी व्यवस्था थी कि शरीर को चालित करती थी योग माया, भगवान की स्वरूप शक्ति उससे घर का काम करती थी, लेकिन चित्त उनका बिल्कुल नहीं था। चित्त तो तम अनुद्रुत कृष्ण के पास ही बह गया था, चला गया। कृष्ण लीला प्रगायन्त, इस दशा में कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते थे। कैसी लीलाएं, जो वन में लीलाएं करते थे उन्हीं लीलाओं का गान करते रहते थे। नित्य नवीन वन्य वेशभूषा धारण करके श्री कृष्ण नाचते थे गाते थे, और समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला वेणु वादन की लीला, इसी को मुख्य रूप से वे कह रहे हैं इस जुगल गीत में। बांसुरी बजाना श्री कृष्ण का यही मुख्य काम है, आनंद से देखा जाए वो गाय चराते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है उनके लिए, लेकिन गौएं तो चरती रहती हैं, बल्कि बांसुरी से ही उनको वो चरा लेते हैं, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, निकलते हैं घर से उस बांसुरी बजाते हुए, वन में बांसुरी बजाते रहते हैं, और लौटते हैं तो उस समय भी वेणु वादन करते रहते, करते ही रहते। और भक्त लोग भी जान गए हैं कि बांसुरी से श्री कृष्ण को इतना प्रेम है, तो उनको बांसुरी जरूर पकड़वाते। एक बार एक भक्त भोग लगा रहे थे ठाकुर को, तो बांसुरी उतारे नहीं, भोजन कराते समय भोग लगाते समय उस समय कम से कम बांसुरी हटा देना चाहिए, आखिर हाथ से खाएंगे ना, उसे बांसुरी बजाते रहेंगे तो खाएंगे कैसे, तो भक्तों का भाव है कि बांसुरी हटा देना चाहिए। तो वो भक्त बांसुरी नहीं हटाए थे, दूसरे ने कहा अरे भोग लगा रहे हो बांसुरी नहीं हटाए, तो वो व्यक्ति इतना अपने को अपराधी मानने लगा, वो गलती हो गई। मेरे कहने का आशय यह है कि बांसुरी से इतना प्रेम है भगवान को, अब वो भोजन के समय भी बांसुरी रखे रहे, और ये लड्डू गोपाल जी हैं जो अभी बांसुरी छुए भी नहीं होंगे, केवल लड्डू खाते रहते हैं, बकैया चलते हैं, उनको भी बांसुरी रखा रख देते हैं। वो क्या करेंगे बांसुरी? बोले भाव ठीक है, बड़ा होंगे तो बजाया करेंगे। तो उनको भी बांसुरी देते हैं। इसके पहले एक इसमें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन है। इस अध्याय में भी लगभग उसी का वर्णन है, परंतु वह लीला शुरू शुरू की थी, पूर्वराग की लीला थी, और यह पूर्ण अनुराग होने के बाद पूर्ण रूप से लौकिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, वैसे तो नित्य प्रिया है भगवान की, लेकिन जब उनका प्रेम पूर्ण डेवलप हो गया है उस समय इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। प्रगायंत, श्री गोपियां गाती रहती थी। प्रकृष्ट गान का मतलब ये है, बारंबार वर्णन करना, बारंबार वर्णन करना, इसके अलावा कुछ काम न करना। प्रगान का अर्थ ये नहीं है कि वो करताल मृदंग लेकर के और गा रही थी, समाज में ऐसा नहीं कर सकती थी। वहां परकिया भाव था, भगवान की वे परकिया प्रेयसी हैं, तो वे अपने भाव को ब्रज में खोल नहीं सकती थी। तो प्रगान का अर्थ है आपस में झुंड के झुंड, कहीं 10 झुंड यहां है, 20 वहां है, 100 वहां है, और भिन्न भिन्न समय में वे श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, दिन भर के उसको गा रही हैं, अब आपस में वर्णन करती हैं निरंतर। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वयरम अभिरमिता नाम दिवा तद विरहिता नाम अनुगीतेन दिन निस्तार प्रकारम आह। रात्रियों में श्री कृष्ण के साथ स्वयर विहार करने वाले सुख में मग्न रहने वाली श्री गोपियां दिवा दिन में तद विरहिता नाम कृष्ण से विरहित हो जाती थी, तो अनुगीत में गीत गाती थी, कृष्ण के विषय में लीलाएं बोलती रहती थी। तो इस तरह से लीला कथा कहते हुए सुनते हुए दिन निस्तार प्रकार, उनका दिन कैसे बीतता था, किस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं गाती थी, इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। गोप्यायति दुखे न कृष्ण, बड़े कष्ट से दिन बिताती थी। अब एक बार श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की टीका को पढ़ रहे हैं। ननु एवं श्री ब्रजेन्द्र किशोरेण रात्रिषु रास क्रीड़ा विना बहुधा रमिता नाम तासाम दिवसेषु तद विरहेण महद दुखम संभाव्य से। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही गोपीजनों के भाव से दुखी हो रहे हैं, गोपियों के दिन में कृष्ण विरह के कारण जो दुख हो रहा था उस दुख से वे भी भावित हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सव तथा सह गोपी भी राम मधुसूदन यथाब्ज कोटि प्रतिमा क्षणस्तेन बिना भवत। गोपियों के साथ जब कृष्ण का विरह होता था तो उनका एक क्षण भी युग के समान बीतता था, तो इसी प्रकार जब संयोग होता था तो युग भी क्षण की तरह बीत जाता था। अतः तद दुखम वत्ता भी कथम निस्तीर्णम इत्यपेक्षा यमा, इस दुख को कैसे पार करती थी, इस दुखमय दिन को कृष्ण शून्य अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे तदा लोकनमंत्रेण, भगवान को देखे बिना दिन कैसे बीतता था उनका इस दुख में। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपी आई थी, प्रकृत्या एव तद विरहा सहा अपि कृष्णे परमानंद घनमूर्तौ परम आकर्षके वा बनम जाते। स्वभाव से ही श्री गोपियां श्री कृष्ण के विरह को नहीं सह सकती थी कभी भी। ऐसे परम प्रियतम वन में चले जाते थे इसलिए और अधिक दुख होता था। ऐसे कृष्ण का संग छूट जाए ब्रज में ही, कृष्ण अपने पिताजी के घर में है, गोपी अपने घर में है, या कृष्ण गोदोहन करवा रहे हैं, गोपी अपने खिड़क में है, यह दुख ही असह्य था। जबकि ब्रज में रहते थे सुख से रहते थे, मां यशोदा के लालन पालन में और भोजन आदि करने में सखाओं के साथ केली करते थे, हास्य नर्म परिहास आदि करते थे ब्रज में, गौ चरा करके जब आते थे, उस समय भी गोपियों के लिए कृष्ण का विरह असह्य था। तो फिर जब वे वन में चले जाते हैं तब कितना दुख होगा। वन कोई ऐसा सुखमय स्थान नहीं होता है, वन में कांटे होते हैं, जंगली पशु होते हैं और अनेक प्रकार के उभड़ खाबड़ जमीन, कहीं सरकरा, कहीं कांटे, कहीं कुश इत्यादि भरे रहते हैं, उसका स्मरण करके और अधिक दुख होता है। तो कृष्ण वनम जाते, वन में चले जाने को वनम जाते। दिवा श्री वृंदावनम प्रयाते सती, जब श्रीकृष्ण वृंदावन में चले जाते हैं, अतएव तम कृष्णम अनुपश्चात संलग्न तया वेगे न विषम गतम चेतो जसंता। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं तम अनुद्युत चेत, ऐसा लगता था कि कृष्ण के साथ गोपियों का चित्त बिल्कुल संलग्न है, सटा हुआ है, वो अलग हो ही नहीं सकता। वे जाते हैं तो उनके साथ ही साथ उनका चित्त चला जाता है, गोपियों का चित्त कृष्ण के साथ चला जाता है। विचार करना चाहिए श्रील सुखदेव गोस्वामी राजर्षियों की सभा में, ब्रह्मर्षियों की सभा में गंगा के तट पर भगवान कृष्ण की लीला कह रहे हैं, तो वे कहते हैं कि गोपियों का चित्त संलग्न तैयार, ऐसा लगता था कि गोपियों का चित्त भगवान कृष्ण के चरण कमल से, उनके स्वरूप से चिपका दिया गया, वो दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए तमनु दूत चेत वेग से चला गया, ऐसा लगता था कि पहले से ही चिपकाया गया। अतएव कृष्ण से लीला मुहुर नव नव वेशादिना वन्य क्रीड़ा प्रकर्षण प्रायो मोहन वेणु वादन प्रधानत्व जगत चित्ताकर्षकतया गायन्त्य। कृष्ण लीला प्रगायन्त्य, कृष्ण की वन्य क्रीड़ा गाते थे जिसमें मोहन वेणु वादन सबसे मुख्य लीला है और जगत का चित्त आकर्षित करने वाला। कृष्ण लीला दो शब्द का प्रयोग यहां किया, दो बार कृष्ण शब्द, कृष्णे वनम जाते कृष्ण लीला गायन्त, कृष्ण के वन में चले जाने पर कृष्ण की लीला गाती हैं, उसी की व्याख्या कर जगत चित्ताकर्षकतया गायन्त। भगवान की लीला भी, कृष्ण की लीला भी कृष्ण जैसा ही आकर्षक है, यह कहने के लिए कृष्ण लीला कृष्णेन वनम जाते कह रहे हैं। कृष्णस्य इति तल्लीला नामपि तादृशत्वम् अभिप्रेतम्। कृष्ण की लीलाएं भी कृष्ण के समान ही जगत चित्ताकर्षक हैं, यह अभिप्राय है सुखदेव गोस्वामी का। दुखेन विशिष्टा नपि निम्यो गमया मासु तथा जानते वक्षसि एवं ब्रज स्त्रिय इति बाद में कहेंगे। एवं तासां दिन नयन हेतु तद लीला प्रगायनस्य महात्म्य। दिन बीतता नहीं था, कष्ट से बीतता था। वास्तव में दिन बिताने के लिए लीला नहीं गा रही थी, लीला तो अपने आनंद से गा रही थी, पर फिर भी दिन बीतने में लगता था कि करोड़ों वर्ष बीत गया, युग बीत गया। सवेरे से शाम तक ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी का दिन बीता है न, कष्ट से बीतता था, विरह का दुख असह्य था। भक्तों के लिए भगवान के विरह में भगवान की लीला का गान ही सबसे आनंददायक होता है, और ऐसे आनंददायक भी होता है और आग और भी उत्पन्न करता है और ताप उत्पन्न करता है, पर फिर भी ये स्वभाव है सदा कृष्ण की लीलाओं का गान करना, और श्री गोपी जनों का तो कहना ही नहीं है, तो वे गाती रहती थी। ईषद अनुसारेण एवं इति अस्य अर्थ सभी व्यक्त एवं भाव। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। एवं रात्रिषु गोप्य स्वकांतेन सह लब्धांग संगा नृत्य गीत नर्मा धरा मृतादिकम पिबंत संभोग रस निमग्ना बभु इति उक्तम। लब्ध मनोरथ मात्र संभोगा तद वेणु गानामृत मात्र पिबंत विप्रलम्ब रस निमग्न बभूर इत्या। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रात्रि में गोपियां अपने प्रियतम के साथ लब्धांग संगा उनका आलिंगन उनके साथ नृत्य आदि करती थी, तो नृत्य गीत नर्म और अधरामृत पान आदि करती थी, इस तरह वे संयोग रस में निमग्न थी। ये तो कहा सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला में। अब वे कह रहे हैं कृष्ण के विरह में कृष्ण लीला गानामृत पीती थी, ये वेणु गीत सुनती थी। कैसे सुनती थी? कभी कभी वे तो वन में ही चली जाती थी, अथवा उनका चित्त कृष्ण के साथ ही रहता था, इसलिए कृष्ण जो कुछ भी गाते थे जैसी भाव भंगे थे उसको देखती थी अपने भाव नेत्र से प्रेम नेत्र से, और कृष्ण के बांसुरी के गीत को सुनती थी। अथवा कभी कभी कुसुम चयन के बहाने, देवता पूजन के बहाने, सूर्य पूजा के बहाने वन में चली जाती थी और वहां डायरेक्ट कृष्ण को देखती थी बांसुरी बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए सखाओं के साथ। तो इस तरह से अनुभव करती थी, तो कृष्ण का वेणु गानामृत पीती थी, परंतु फिर भी संतोष नहीं होता था, वो व्याकुल ही रहती थी और इस प्रकार कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी। तो सर्वप्रथम वेणुवादन की लीला है, और वेणुवादन का प्रभाव देवताओं पर, देवताओं की स्त्रियों पर क्या पड़ता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्री गोपियां कह रहे हैं, वाम बाहुकृत वाम कपोलह, श्री कृष्ण का विशेषण है। वाम बाहु, वाम बाहु मतलब वाम बाह पर, बाएं कंधे के तरफ, कृत वाम कपोलह, बाहु वाम बाहु मूले कृत अर्पित वाम कपोलह जेन सह। कितना सुंदर वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो किस मुद्रा में रहते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किधर देखते हैं, ग्रीवा कैसी होती है, हाथ की उंगुलियां और अधर और कपोल, इन सब का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, सुनिए सुनिए, पास वाले दया कीजिए निकट के तंद्रा ग्रस्त लोगों पर, कृपा करना चाहिए। वास्तव में बहुत से लोग तंद्रा में आ जाते हैं, तंद्रा समझते हैं तंद्रा का अर्थ होता है निद्रा की दशा, निद्रा के पूर्व की दशा। वाम बाहु कृत वाम कपोलह श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलह। एक हमने देखा बॉम्बे में एक छोटी सी बच्ची है, साक्षी नाम है, तो उसके गार्जियन कोई कहते कृष्ण कैसे लीला करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे बांसुरी बजाने की मुद्रा में होती है। सबसे पहले छोटी सी बच्ची है तो कैसे रहते हैं कृष्ण, कृष्ण को जानती होता हाँ ऐसे। तो कृष्ण मतलब है बांसुरी बजाने वाला ही हुआ मुख्य रूप से। कृष्ण को जानती हो उसने बातचीत हो यही है कृष्ण का परिचय। बाम बाहु कृष्ण बाम कपोल, बाम बाहु मूल कृत अर्पित बाम कपोल जे न स। बांसुरी बजाने में ये पहले मुद्रा रहते हैं। अच्छा, इसके साथ और भी समझ लेना चाहिए, बाम बाहु कृष्ण बाम कपोल अपने बाएं जंघे पर अपना दाहिना जंघा किए रखते हैं, यही खड़ा होने की मुद्रा है। सो करके और बैठ करके भी बांसुरी बजाते होंगे कभी, लेकिन ज्यादा हुए इस तरह खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। तो गर्दन टेढ़ी होती है, गर्दन टेढ़ी होती है, बाएं कंधे की तरफ, बाम बाहु के मूल, बाहु मूल इसको कहते हैं, बाम बाहु के मूल में बाम कपोल किए रहते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं। सब जगह मुद्रा देखी जाती है श्री कृष्ण। बाम बाहु कृत, कृत मने अर्पित, बाम बाहु के तरफ बाम कपोल किए हैं और बाएं जांघ पर, बाएं पैर के ऊपर ऊपर में आगे दाहिना पैर किए रहते हैं और इस तरह खड़े होते हैं। इसको बहुत ही सुंदर भाषा में त्रिभंग ललित मुद्रा कहते हैं। गर्दन भी भंग है और जो पैर भी भंग है और कमर भी भंग, त्रिभंग। भंग मतलब टूटा हुआ नहीं, भंग मतलब टेढ़ा टेढ़ा, त्रिभंग ललित मुद्रा। तो श्री गोपीजन इस तरह से कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। बाम बाल कृत बाम कपोल बलगित भ्रूह, और बलगित भ्रूह जब बांसुरी बजाते हैं तो अपने भावों को मटकाते हैं, भावों को इधर उधर चालू करते हैं। पास में सुबल श्रीराम आदि सखा रहते हैं तो संगीत के गान के सौष्ठव को बताने के लिए, समझ रहे हो ना मैं क्या गा रहा हूं, इसके लिए भावों से इशारा करते हैं क्या गान हो रहा है। तो बच्चे प्रशंसा करते हैं, सखा प्रशंसा करते हैं, तो श्रीकृष्ण भी भावें नचाते हैं, भावें नचाते हैं। नर्तित भ्रूह इसका अर्थ है, बलगित मतलब नर्तित भ्रूह, भावें नचाते नचाते मुकुंद श्री मुकुंद। अब इस एक दो वर्णन से बलगित भ्रू से और बाम बाहु कृत बाम कपोल से ही सारा पोस्चर समझ लेना चाहिए। वेणुवादन में किस तरह से देखते हैं बलगित भ्रू, जो बांसुरी में कोई गीत गाते हैं तो भगवान अपने सखाओं के तरफ इशारा करते हैं अपने भवों से, सो बलगित भ्रू का। बलगीत का सुंदरी कृत भी होता है, लेकिन यहां बलगीत का अर्थ नर्तित, और पैर की स्थिति, बाह की स्थिति, अधर की स्थिति इस तरह से है। इस तरह से होकर के मुकुंद परमानंद दाता सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जो सुख देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। मु का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ है कुत्सित। जिस सुख के आगे मुक्ति का सुख भी कुत्सित है उसको द जो देते हैं, अर्थात प्रेम सुखम ददाति, मुक्ति से भी बढ़ करके प्रेम सुख के दाता मुकुंद जत्र जदा, यहां जत्र का अर्थ जदा, जदा कोमल अंगुली भी श्रित मार्गम, कोमल अंगुली भी, यही मुद्रा का वर्णन है, अपनी कोमल अंगुलियों से आश्रित मार्गम बांसुरी के छिद्र को, बांसुरी के छिद्रों पर रखते हैं गान के अनुसार, उसको आश्रित मार्ग कहते हैं। कोमल अंगुल भी कोमला भी अन्य जनापेक्षा सुकुमारा भी अंगुली भी, भगवान श्री कृष्ण की अंगुलियां अन्य सबसे अधिक सुकुमार, कोई देवता की अंगुली देवी की अंगुली ऐसी अंगुली नहीं, कोमल अंगुली। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बस कोमल शब्द का प्रयोग किए, कोमल अंगुली। अब किसी रूपक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रूपक मतलब जैसे कमल शब्द का प्रयोग और कुछ नहीं, कोई उपमान देने लायक है ही नहीं। कोमलांगुली भी आश्रित मार्गम, वेणुम का विशेषण आश्रित मार्गम, मार्ग जो बांसुरी के सप्त स्वर छिद्र होते हैं सात छेद, वो सात स्वर निकालने के लिए, तो अपनी अंगुलियों द्वारा उसके मार्ग को आश्रित किए, समझ उसके छिद्रों पर रख रहे हैं, ये है आश्रित मैंने रखना। आश्रिता मार्ग सप्त स्वर छिद्राणी जस्य तम, कोमल अंगुली का अर्थ करते हैं श्रीपद सनातन गोस्वामी कि अभी किशोरावस्था में भगवान हैं, तो अंगुलियों में थोड़ी भी कठिनाई नहीं आई है, काठिन्य नहीं आया, कड़ी नहीं है। यदि कहा जाए तो माखन से भी अधिक सुकुमार है, ऐसी कोमल अंगुली, इतना सुंदर। गोपीजन का भाव है भगवान के प्रति, एक तो उनका भाव है और श्रीकृष्ण का स्वरूप सौंदर्य अच्छे कोमल है ही, तो श्री गोपियां कहते हैं कोमला भी अंगुली भी, कोमल अंगुलियों से बांसुरी के छिद्रों पर, कोमल अंगुलियों को बांसुरी के छिद्रों पर रख करके पहले रखते हैं, बजाने से पहले भी रखते हैं और बजाते समय तो रखे ही हैं, तो बजाते समय अधरार्पित वेणु, अधर अर्पित वेणु, इसका अर्थ है अधरे अर्पितम वेणु जेन तम, अधर पर वेणु अर्पित किए हैं अथवा अधर को ही वेणु को दिए, अधरम अर्पितम वेणवे, वेणु को ही दिए, ऐसा लगता है ये ईर्ष्या भाव से बोल रही है गोपियां। अधरार्पित वेणु का अर्थ एक तो हुआ कि अधरे अर्पितम वेणु तम वेणु बाजत इरेत, अधर पर बांसुरी को रखे हैं, उस बांसुरी को बजा रहे हैं, नहीं अधर ही वेणु को दिए, अधर ही वेणु को दिए, और दोनों बात है वास्तव में, अधर पर वेणु है लेकिन देखा जाता है कि अधर को वेणु पर रखे हुए हैं, उसमें फूंक रहे हैं बजा रहे हैं, तो गोपियां द्वेष भाव से कह रही है कि वे सदा के लिए बांसुरी को ही वेणु को ही अपना अधर दे चुके, अधरार्पित वेणु, ऐसी सौभाग्यवती वेणु को, सौभाग्यवान वेणु, वेणु पुरुष जाती है, वेणु को जदा मुकुंद ईरयति वदयति, ईरणा का अर्थ क्या है, चालित करना, प्रईरणा प्रेरणम प्रसर्ग लगता है, ईरयति मतलब प्रेरयति, जब प्रेरित करते हैं, जब वेणु को प्रेरित करते हैं उस समय क्या दशा होती है देवांगनाओं की, उसका वर्णन अगले श्लोक में है। ईरयत, इसका एक अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण को वेणु बजाना नहीं पड़ता है, बस प्रेरणा करते हैं, केवल अपना अधर सटा देते हैं, बस गाने लगता है, गाने लगता है। भगवान को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, बांसुरी बजाने वाले को बहुत फूंकना पड़ता है, सांस हाफ हाफ करके लेना पड़ता है, वैसे नहीं करना पड़ता, इसीलिए ईरयती प्रेरयती वेणु कहते हैं। जब वो वेणु को प्रेरणा देते हैं केवल अपना आधार रखते हैं तो गाने लगता है। तत् मुकुंद वेणु गीत उपधार जब उसको सबसे पहले कौन सुनते हैं? देवांगनाएं विमानों पर बैठ करके देवताओं की स्त्रियां वृंदावन में आ जाती हैं और उनको सब पता है कि अब श्रीकृष्ण निकलेंगे ब्रज से वन में आएंगे, तो देवांगनाएं दिन भर श्रीकृष्ण के स्वरूप को देखती हैं, बांसुरी के गीत को सुनती हैं, अपने पतियों के साथ विमान पर आती हैं। विमान अब उनके लिए ऐसा नहीं है कि अब टिकट लीजिए और फेयर जांच कीजिए, ये कीजिए, बोर्डिंग लीजिए तब चलें। घर में ही विमान पड़ा रहता है, आकाश में ही रहता है, हमेशा पृथ्वी पर नहीं आता है, आकाश में ही विमान रहता है। तो विमान का सबसे सच्चा प्रयोग वे करती है, कहती है चलिए 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 वृंदावन वृंदावन। देव लोग सुनने लगता था, एकदम नरक जैसा लगता था वृंदावन के आगे, जहां भगवान खेल रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं तथा वेणुवादन कर रहे हैं। शक्ति होते हुए कौन नहीं वहां जाएगा? जहां भगवान साक्षात प्रकट हैं, लीला कर रहे हैं, तो वे आती हैं। और तत् उपधार जब सिद्ध सह व्योमयान वनिता, व्योमयान वनिता ये देवांगनाओं के लिए गोपियां कह रही हैं। व्योमयान वनिता, वनिता का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री, ज्योति स्त्री, वनिता। व्योमयान वनिता, व्योम में ही जिनका यान है, गमन है, जो आकाश में ही चलते हैं, ऐसे सिद्धों की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य कर चुके हैं, अर्जन कर चुके हैं और सिद्ध हो चुके हैं, वे देवता अथवा ऐसे ऐसे देवता जो भगवान की भक्ति करके और अब सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और वैकुंठ जा सकते हैं, कुछ सिद्ध कहा गया है, तो आकाशचारी सिद्ध है, मतलब आकाश में गमन करते हैं। व्योम का अर्थ है आकाश और यान का अर्थ है यान, सवारी या गमन। व्योम यान देवताओं को ही कहते हैं, सिद्धों को ही कहते हैं, जिनका यान, यानम मतलब गमन, जिनका गमन आकाश में ही होता है। स्वर्ग में ऐसे रोड फोल्ड की कोई जरूरत नहीं है, ये रोड और ट्रैफिक लाइट ये सब, और उस पर भी कचाकच धक्का ऐसा कुछ नहीं है स्वर्ग में, जिनको व्योम यान कहते हैं, अथवा व्योमनी यानानी विमानानी जैसा तई सह, अथवा व्योम में जिनके विमान हैं उन देवताओं के साथ, अपने पतियों के साथ व्योम यान वनिता देवांगनाएं। तत् उपधार जब, तत्कार से मुकुंद गीत को, मुकुंद के वेणु गीत को उपधार जो श्रुत्वा, प्रश्न पहले से सुनती है। वेणु गान का ऐसा माधुर्य है, स्वर लहरी है वास्तव में, क्योंकि देवांगनाओं को भी आकृष्ट करता है। कृष्ण किस मुद्रा में बांसुरी बजा रहे थे तो उसमें एक बात बताई गई है कि वल्गित भ्रू, नर्तित भ्रू, इस समय स्पेशल बांसुरी बजा रहे हैं देवांगनाओं को आकृष्ट करने के नियत से भी। भगवान के बांसुरी गीत का प्रभाव जरा विचार कीजिए, मनुष्य की क्या बात है, देवता भी उसको सुनकर के आकृष्ट हो जाते। देवांगनाएं आई विमानों पर हैं, वो पृथ्वी पर नहीं उतरी है, विमान पर है, लेकिन विमान बिल्कुल नीचे आ गया है, देखती हैं कृष्ण को, तो कृष्ण भी बलगित भ्रू अपनी भौहों से कुछ इशारा करते। फिर भगवान ने सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, भगवान है, और कोई मर्यादा आदि के लिए नहीं कर रहे हैं यहां पर। अतः किसी देवता की स्त्री पर इस भाव से देखना कि मैं तुमको चाहता हूं, ये भगवान कृष्ण के लिए शोभा की बात है। बलगित भ्रू का यह अर्थ ये मुस्कुरा देते हैं दिवंगनाओं को देख करके और इशारा करते हैं, ये तुम भी आ जाओ वृंदावन में, मान लीजिए इस तरह से इशारा करते हैं, इसको बलगित भ्रू कहते हैं। इतना सुनना, सुनने पर उपधार जब श्रुतवा विस्मिता, पहले तो दूर से ही सुनने पर विस्मित हो जाते हैं, और सुन करके क्या होते, काम मार्गण समर्पित चित्त है, काम के जो सम्मोहन आदि पांच बाण हैं वो सम्मोहित हो जाती है, भगवान कृष्ण से सम्मोहित हो जाती है, और एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कामदेव के बाणों को उन्होंने समर्पित कर दिया अपने चित्त को। समर्पित कर देना इसका अर्थ है श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गए, पति साथ में है, वे आकाशचारी देवी है, कोई मानवी नहीं है, और उसमें भी कोई गोपी नहीं है, लेकिन श्रीकृष्ण का ऐसा प्रभाव है कोई देवी हो चाहे कोई हो वो आकर्षित हो जाती है, और पति के साहचर्य में, पति साथ में है, विमान पर साथ में पति आए हैं, कि उनके सामने ही काम मार्गण समर्पित चित्त, मार्गण का अर्थ होता है बाण है, काम के बाणों को चित्त समर्पित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि श्रीकृष्ण के वेणु गीत को सुन करके श्रीकृष्ण से मिलने की इतनी लालसा हुई, इतनी लालसा हुई कि अब यह भी ध्यान नहीं था कि मैं देवी हूं, मैं अपने पति के साथ बैठी हूं, और अब कुछ भी वो इसका ध्यान नहीं रहा, लोक लज्जा आदि का ध्यान नहीं रहा, इसको कहते हैं काम के बाण पर अपना चित्त अर्पित कर देना। बस केवल कृष्ण से गीत वेणु गायक से मिलने की लालसा भर रहा है जीवन में, और कुछ भी नहीं, अब कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि हमारी ये मर्यादा है, पहले तो हमें मनुष्य से नहीं मिलना चाहिए, देवता लोग इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, उनको मनुष्य से बहुत बुरे लगते हैं, खराब लगते हैं, मतलब सुंदर जाति नहीं होता है, इसलिए देवता लोग, देवताओं में मनुष्य में बहुत अंतर है, परंतु यहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जो प्रभाव है वह मानव पर ही नहीं समस्त जीवों पर एक समान प्रभाव है, और क्षण भर में वो मर्यादा का त्याग कर सकती हैं देवताओं की स्त्री, मनुष्यों के उसमें भी गोपियों की तो बात ही क्या है, वे देख रही हैं, और पहले तो सुनी और सुनकर कहीं विस्मित हो गए, पहले विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, कितना अद्भुत गीत है, अद्भुत तान तरंग है, देवता तो गान में स्वयं ही प्रवीण होते हैं, तो वे इस तरह से अपने चित्त को समर्पित कर दी काम के बाणों पर, अर्थात काम के वश में हो गई, और ऐसा वश में हो गए, ऐसा वश में हो गए कि अपस्मृत निव्य, वे पति के साथ विमान पर है, मूर्छित होकर के, सम्मोहित होकर के पति की गोद में गिर गई हैं, और पति देख रहे हैं, तो उनकी भी तो वही दशा हो रही है वासुदेव के गीत को सुन करके, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को उठाते हैं, संभालते हैं। कस्मलम ययु, शरीर की सुधि भूल गई, शरीर की नीवी, वस्त्र का बंधन ढीला हो गया है, इसका भी उन्हें पता नहीं था, अपस्मृत निव्य, निवी का स्मरण नहीं रहा, भूल गई, और कस्मलम यजु, मोह को प्राप्त हुई। कस्मलम, यह कस्मलम का अर्थ है अपने स्वरूप में नहीं रह गई, न अपना स्मरण रहा, न पति का स्मरण रहा, न विमान का, न देवलोक के कार्य का, कुछ का, इस तरह से मोह को प्राप्त हो गए, केवल कृष्ण से मिलन की लालसा थी जीवन, इसको कस्मल कहते। जब तक संसार की याद है, स्मरण है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा काम धंधा है, तब तक श्री कृष्ण का आवेश बहुत कठिन है, बिना त्याग किए कृष्ण में चित्त लगता नहीं है, जब तक व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है तब तक वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है। इतना इतना काम आज के आदमी को लगा हुआ है, इसमें लीला के अतिरिक्त कुछ लौकिक लीला सब पर ध्यान दे रहा दिला रहा, इतना इतना आदमी फंसा हुआ है। कुछ ही वर्ष पहले ये हमको सुनने को नहीं मिलता था कि अब बच्चे की परीक्षा हो रही है तो माता पिता भी रहेंगे, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है, लड़कों का एग्जाम चल रहा है, इसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। अगर कृष्ण भी खड़ा हो जाए गंगा जी के तट पर तभी तो कहना ही नहीं, हमारे एग्जाम हो जाएगा बच्चों का तब हम दर्शन कर लेंगे, है ना। आज की ऐसी स्थिति हो गई, आज एग्जाम है, आज वो है, ये है, ड्यूटी है, इतना फंसा हुआ है आदमी। ये देवियां भी स्वर्ग में थी और स्वर्ग के लोग ज्यादा रूटीन परायण होते हैं, उनकी भी इज्जत है, उनका भी समाज है, जो मनुष्यों से तो मिलते भी नहीं, लेकिन एक मनुष्य का गीत सुन करके वे स्वर्ग लोक के सारे वैभव और इज्जत सबको भूल जाए, कृष्ण के साथ ही रहने की कामना हो जाए, यह है भगवान का चमत्कार, ये कृष्ण का सहज आकर्षण है। कसमोह कसमलम यज्ञ मोहम मोहित हो गए, मोह का अर्थ मूर्छा और मूर्छा का अर्थ हत विवेका, अब विवेक खत्म हो गया कि हमें यहां देव हैं और देवलोक जाना है, वहां भी बच्चों का एग्जाम हो रहा होगा, सब देवियां भूल गए, सब कुछ भूल गए। एक मैं छोटा सा उदाहरण दिया इसलिए कि इतनी फसावट है व्यक्ति को, जीवन में फुर्सत नहीं, जबकि जीवन मिला है केवल भक्ति करने के लिए, अगर जीने की व्यवस्था किसी और तरीके से हो जाए तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये तो स्वर्ग से देवियां आई ही हैं, वृंदावन में आई हैं, वृंदावन में आने के बाद अब यही मनोरथ हो रहा है कि बस वृंदावन बिहारी के साथ रह जाए, वास्तव में जीव और किसी का नहीं है। फैक्ट ये है, न कोई किसी का पत्नी है, न कोई किसी का पति है, ये सब संबंध थोड़े काल के लिए बनाए गए हैं माया के द्वारा, निभाना चाहिए, लेकिन असली संबंध को भी तो जानना चाहिए। वास्तविक पति, वास्तविक भाई, वास्तविक बंधु, ये सब कुछ श्री कृष्ण है। तो इस तरह से कसमल हो जाना और शरीर की ये दशा हो जाना कि वस्त्र ठीक से पहने हैं नहीं पहने इसका भी ध्यान नहीं है, और शरीर के श्रृंगार आदि का तो कहना ही क्या, मोह को प्राप्त हो गए। तो यह है भगवान कृष्ण के वेणु गीत का अद्भुत प्रभाव। तो श्री गोपियां वर्णन में यह भी भाव व्यक्त करते हैं, सखी सौभाग्यवती ये देवियां हैं जिन पर कोई बंधन नहीं है, और इनका कितना बड़ा भाग्य है कि ये कृष्ण का दर्शन करने आते हैं तो इनके पति भी साथ में आते हैं। और हमारे पति तो ऐसे दग्ध मुख हैं कि अगर वो कृष्ण का नाम सुने तो उनको ज्वर चढ़ जाता है, खास करके जब ये सुने कि यह कृष्ण को देखी है तिरछी नजर से, तब तो इतना कठिन है ब्रज में श्री कृष्ण को देख पाना, पर फिर भी गोपियां उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं के विषय में रात दिन कहती रहती है। अद्भुत लीला वैभव है भगवान श्री कृष्ण का। तो श्री गोपीजनों के मुख से ही यह सब वर्णन किया जा रहा है, तो इसके द्वारा ध्वनित होता है कि अपने दुर्भाग्य और देवियों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं, जबकि समस्त देवियां इनके चरण नख पर निछावर हैं, वो सर्वोपरि भाग्यवती, सर्वोपरि भाग्यवती, सबसे बेस्ट फॉर्चुनेट, सबसे मोस्ट फॉर्चुनेट सौभाग्यवती गोपियां, कृष्ण में उनका इस तरह से प्रेम है और कृष्ण भी इनमें आसक्त हैं। परंतु वेणु गीत लीला में यहां इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि श्री कृष्ण देवांगनाओं में आ सकते हैं, नहीं, वो सहज गान कर रहे हैं, सहज बांसुरी बजा रहे हैं। अब देवियां इन पर मरने लगे तो इनका क्या दोष है? कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इस तरह से भगवान वासुदेव आते हैं। अब हरेक श्लोकों में, युग्म श्लोक में, वेणु वादन की यही मुद्रा लगभग लेनी चाहिए। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूर अधराकृत भेड़ कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्य ई रहती जत्र मुकुंद। तो ये तो इस सेम वर्णन लेना चाहिए, सब जो बांसुरी इसी तरह से बजाते। तो इस जुगल गीत में जिसमें 12 जुगल हैं, 24 श्लोक है, तो द्वादश जुगल हैं। कोई कोई वैष्णव कहते हैं कि द्वादश वन में भगवान विहार करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इसीलिए द्वादश जुगल है। दो दो श्लोक एक एक लीला का वर्णन करते हैं। तो देवांगनाओं का वर्णन किया गया इसमें। अब दूसरी लीला, ये कहीं गोपी नहीं बोल रही है। एक तो ये अर्थ है कि झुंड में कभी कोई गोपी बोल रही है, कभी कोई गोपी बोल रही है, कभी कोई गोपी। जब कोई की इस तरह से बांसुरी बजाते हैं और देवताओं की स्त्री आती हैं, कृष्ण पर वे मुग्ध हो जाती हैं, कृष्ण में आसक्त हो जाती हैं, तो दूसरी गोपी बोलती है। अथवा किसी अन्य ग्रुप में, जूथ में कोई और गोपी बोल रही है। हम तो हे अबला, अबला हे अबला इदम चित्रम श्रृणुत। अरे क्या वर्णन कर रही हो देवी का, एक और आश्चर्य तो सुनो, सुनो आश्चर्य। आश्चर्य मतलब अद्भुत चमत्कार में लीला। श्रृणुत इदम, ये जो मैं बोल रही हूं, इदम चित्रम श्रृणुत, यह आश्चर्यमय बात सुनो। किम, और अबला संबोधन करेगी, हे अबला। तो गोपी कह रही है अबला अन्य गोपियों के, हे अबलाओं सुनो। अबला मतलब जिन्हें बल नहीं है, प्रेम के, कृष्ण प्रेम में जो अधीर हो चुकी है, कृष्ण की लीला से जिसका चित्त तन्मय है और शरीर है, शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है और बेसुध हो रही है, कभी धरती पर लौटती है, खड़ा नहीं रह सकती है, तो उसको कहते अरे अबला तुम कृष्ण प्रेम में बलहीन हो गई हो, तो इदम चित्रम श्रृणुता ये आश्चर्य सुनो। वो क्या, हार हासौ रसे स्थिर विद्युत। कृष्ण कैसे हैं, हार हास, हारवत विशद हास जस्य स। श्री कृष्ण की हंसी कैसी है, हारवत, कोई हार लगाता है, माला लगाता है, तो माला के समान उनकी हंसी है, हार के समान हंसी है। क्यों, वेणु बादने न अधो बदने न हसत हारेशु स्फुरम हास जस स। अथवा वेणु वादन जब श्रीकृष्ण करते हैं तो कभी कभी नीचे देखते हैं, तो नीचे देखते हैं तो उनकी हंसी उनके हृदय पर, उनके हारों पर, माला पर स्फुरित होती है हंसी। कैसे हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, तो कभी कभी दांत प्रकट होते हैं, तो हार जो लगाए हैं रत्नों का हार, उस पर उसका स्फुरण होता है। एक तो लाल लाल अधर है और श्वेत दंत पंक्ति, और भगवान का जो मुख है वो पंकज के समान है, कमल के समान, कमल से भी अधिक सुंदर। तो जब हंसते हैं तब हार उज्ज्वल होता है, अनेक रंग का हो जाता है, उनको हार हास कहते हैं, जिसका हास हारों पर पड़ रहा है, हार पर हास पड़ रहा है, उसको हार हास कहते हैं। अथवा हारवत बक्षसी शोभमान हास जस स, या जिनकी हंसी बक्षस्थल पर हार की तरह शोभा देती है, स किंवा हार मनोहर हासो जस स, हार माने हर लेने वाला, अथवा जिनका हास मनोहर है, मन को हरने वाला है, ऐसे हार हास सुनो स्थिर विद्युत। और श्री कृष्ण और कैसे हैं, स्थिर विद्युत, बिजली बिल्कुल अस्थिर है। विद्युत विद्युत बी का अर्थ है विशिष्ट, द्युत माने चमकने वाली चीज, विद्युत जो बहुत चमकती है उसको विद्युत कहते हैं बिजली। जब हार लगाए हैं रत्नों का अथवा पीताम्बर है अथवा श्री लक्ष्मी जी हैं बाएं भाग में बाम रुमाल ली, देखो देखो स्थिर विद्युत है। और श्रीकृष्ण का वक्षस्थल सांवले मेघ के समान है और उस मेघ में बिजली अस्थिर स्थिर विद्युत। ये आश्चर्यम सुनतर आश्चर्य सुनो, श्रीकृष्ण सांवले बादल के समान है और बाएं और सांवले शरीर पर रत्न जो है वो अस्थिर विद्युत की तरह है अथवा पीताम्बर। लेकिन अस्थिर विद्युत का अर्थ यह भी किया जाता है कि पीताम्बर तो कभी कभी हिलता है हवा में, लेकिन एक ऐसे बादल की कल्पना कीजिए जिसमें बिजली एकदम अस्थिर है, अस्थिर विद्युत। ऐसी ये अभूत उपमा अलंकार इसको कहते हैं, जो होता नहीं है फिर भी उससे उपमा दे देना अस्थिर विद्युत। तो बाएं वक्षस्थल में श्रीकृष्ण वो जो पीत रोमावली है कृष्ण उसके लिए अस्थिर कर रहे, अथवा कोई मणि होगा कुछ समय के लिए अस्थिर है देखो। तो सांवले वक्षस्थल पर यह अस्थिर विद्युत है, उरसी वक्ष से अस्थिर विद्युत स्थिरा विद्युत व लक्ष्मी जस स, अथवा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी से तत्पर है श्री वत्स श्री रेखा उसी को कहना, अथवा श्री लक्ष्मी जी कभी प्रकट हो गई होगी छाती पर ही। तो लक्ष्मी जी गौर वर्ण की हैं, गोरी हैं बिजली की तरह, तो उनको गोपियां कहते हैं कि अस्थिर विद्युत है, आश्चर्य की बात है। अयम नंद सुनु स्थिर विद्युत इव लक्ष्मी जस स, अथवा लक्ष्मी का अर्थ शोभा किरण छटा उज्जवल नील मणि, मणि मणि नील है लेकिन उसका प्रकाश उज्जवल होता है। तो श्रीकृष्ण ऐसे तो हैं सांवले बादल के समान, लेकिन इनकी जो छटा है कांति है वो अस्थिर विद्युत जैसी है। लक्ष्मी का अर्थ चमक भी होता है चमक। अयम नंद सुनु आर्त जनानाम नर्मदः, ये नंद नंदन अयम भगवान चित्त में बिल्कुल स्फुरित हैं, इसलिए अयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वर्णन ब्रज में चल रहा है वन की लीला का, इसलिए फिर भी अयम नंद नंदन अयम नंद सुनु सुनु माने नंद बाबा से जिनका जन्म हुआ है। आर्त जनानाम तद विश्लेष दुख पीड़िता नाम माद्रश नर्मद सर्वलोक कर्तृक उपहासम ददापि स किंवा आनंददाता सम जरहि कुजित वेणु भवति तदा ब्रज वृषा मृग गाव आरात वेणुवाद हृतचेतस वृंदस दंत दष्ट कवला धृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्र आसम। ये आश्चर्य सुनो, ये नंदनंदन जो आर्त जनों को सुख देते हैं आनंद देते हैं वे जब बांसुरी बजाते हैं। आर्त कौन है, तद विश्लेष दुख पीड़िता नाम, दो तरह के आर्त लोग हैं भगवान के साथ। एक तो जब ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं तो ब्रज में श्री गोपियां आर्त हैं दुख में है, जसोदा जी दुख में है, नंद बाबा दुख में आज कृष्ण से विदा हो रहा है, और भी जो स्थवीर हैं ब्रज में बूढ़े हैं गोप गोपी वे दुख में हो जाते हैं कृष्ण वन में जा रहा है संग छूटता है। और दूसरे कोई कोई छोटे छोटे गायों के बछड़े रहते हैं वो वन में नहीं जाते हैं, वे दुखी हैं। और भी कोई पशु जो घर में रखे गए हैं स्पेशल, वे दुखी रहते हैं। और उधर वन में दुखी रहते हैं खग, मृग, तरु, लता, ये सब वृक्ष दुखी रहते। तुम दोनों के लिए नर्मदा शब्द का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण वन में जा रहे हैं तो बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, जिससे कि ब्रज में स्थित श्री गोपियां आगे विरह दुख भूले। बांसुरी सुनाते जाते हैं दोनों तरफ स्टीरियो। जो रात्रि के समय विरह दुख से दुखी हैं वन में रहने वाले, वे भी सुखी हो जाए। और असल में अपने वन प्रवेश का विज्ञापन कर रहे हैं भगवान, उनको भी सुना रहे हैं और बांसुरी की ध्वनि को ब्रज में भी सुना रहे हैं। इसमें आर्त जनाना नर्मदा, नर्म का अर्थ होता है सुख और नर्म का अर्थ उपहास भी होता है। तो श्री गोपियां अपने लिए कह रहे हैं कि लोक में हमारा उपहास करा रहे हैं, बांसुरी के गीत को सुना रहे हैं, तो ये घर में अब काम धंधा नहीं कर सकते, तो सास ससुर और भी लोक में लोग इनको बोलते हैं बहुत कृष्ण प्रेमिका हो गई, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, इसलिए उपहास करते। जाओ ना उसी के साथ वृंदावन में रह जाओ। कुछ लोग गांव के लोग ऐसे बोलते थे ब्रज में, बड़ा भारी भगत हो गई ऐसे भक्ति कर गई। बहुत बहुत बातें बोलते हैं, कई बातें लिखी गई है नमूना के रूप में किस तरह से बोलते हैं। राधा रानी के लिए भी बहुत मुश्किल है कृष्ण का दर्शन कर पाना, बहुत कठिन। इसीलिए कुछ सखियों का ऐसा जूट होता है जो माधव से उनको मिलाने के लिए हमेशा प्रयास करती है। निकुंज जूनो रतिकेल सिद्धेर याल भीर जुक्ति अपेक्षणीय, जो जो जुक्ति अपेक्षणीय है तो मिलाने का प्रयास करते, क्योंकि नहीं मिलने देने की भी युक्तियां बहुत तगड़ी हैं, बहुत बलवान बंधन है। पर फिर भी ललिता आदि सखी उसमें प्रवीण है कि वो मिला ही देती है, और राधा माधव को मिला करके ही वे परम सुख का आस्वादन करते हैं। श्री गोपीजनों का यही सुख है कि राधा कृष्ण सुखी रहे, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण हो, कृष्ण के साथ राधा रानी, वे दोनों को मिलाने में ही परम सुख भोगती हैं। जो सुख श्री कृष्ण को और राधा रानी को भी दुर्लभ है, वह सुख उनकी सखियां लेती हैं। क्यों? इसमें बहुत बड़ा सुख है, स्वसुख वासना नहीं है। कृष्ण हमसे मिले, हमको सुख दें, हमको प्रिय कहना ही नहीं, उनमें सब में एक ही भावना है कि राधा रानी सुखी हो, कृष्ण सुखी हो, परस्पर मिले, तो सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाती हुई प्रिया जी को वे मिलाती। तो ब्रज में बहुत बाधा है, और यह बाधा भी एक स्वारस्य पैदा करने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण की ही व्यवस्था है कि ये बाधा हो, और बाधा के बीच में जो कृष्ण का आस्वादन किया जाता है, दर्शन होता है, तो उसमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो नर्मदा का अर्थ है नर्म परिहास, हमारा परिहास करा रहे हैं। बांसुरी का गीत सुनकर के गोपियां विशुद्ध हो जाती हैं, काम धंधा भूल जाती हैं, तो लोक में लोग उपहास करते हैं, डांट डपट करते हैं। और नर्मदा का अर्थ है सुखद, सुख देने वाले, शांति देने वाले। तो वन में रहने वाले और ब्रज में रहने वाले दोनों को बांसुरी वादन से सुखी कर रहे हैं, एक को सूचित कर रहे हैं एक दल को कि हम आ रहे हैं वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं, अब निकट पहुंच चुके हैं। लीला का भी लगभग क्रम यही है कि भगवान ब्रज से चलते हैं, वन में प्रवेश करते हैं, तो वहां से चालू करके वहां से लौटने तक की लीला है। बीच में वृंदावन बिहार है इस जुगल गीत में, तो इसको कोई गोपी कह रही कि ये पहले आश्चर्य देखो। तो इस प्रकार से जो श्रीकृष्ण जरही कूजित वेणु, जब कूजित वादित वेण उज्जैन तथा भूत भवती थी, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तदा, इसमें तदा नहीं है इस श्लोक में, लेकिन जरही शब्द है, जरही का अर्थ जदा, तो जहां जदा है तो वहां अपने आप तदा का निपात होगा उसको पूरा करने के लिए। जरही जब कूजित वेणु भवती, जब बांसुरी बजाने लगते हैं तब तदा, यहां अपने आप लिखना तदा ब्रज वृषा, ब्रजे ये वृषा ते मृग गाव आरात। तो ब्रज में जो वृष हैं, ब्रज से तात्पर्य है जो गांव में अभी खिड़क में हैं, बंधे हुए हैं, जो वन में नहीं जा रहे हैं, अथवा अगर वन में गए हुए वृष आदि की बात करेंगे तो उनका यह अर्थ हुआ कि जो ब्रजमंडल में बैल हैं, वृष हैं, ब्रजे या वृष, लेकिन ब्रज से तात्पर्य है गांव है, मुखिया से ही हुआ ब्रज वृषा, ब्रज में जो वृष है, वृष का अर्थ होता है बैल पुरुष जाति की गौ, और वृष से उपलक्षण तात्पर्य समझना चाहिए वत्सतरा बछड़े, वत्सतरी बाछियां, बाछी और बछड़े, ये सब जो ब्रज में हैं, जो कम उम्र के हैं और घास नहीं चढ़ते हैं, तो उनको बांध करके रखा गया, नहीं तो जाकर के वन में तो सारा दूध वही पिया करेंगे। तो उनको उनके काम भर दूध पिला करके बाकी दूध तो दुहा जाता है, तो उनको ब्रज में बांध करके या किसी घर में प्रवेश करा करके रखा गया, बाद में उनको खोला जाएगा, अगर कोई कोई घास चरने वाले होते हैं तो छोटे से जगह में ही चर लेते हैं, और गऊ के आने के पहले फिर घर में बन जाते हैं, उनको ब्रज वृषा कहते हैं। वृषा शब्द का अर्थ है बैल गण, लेकिन उसे तत्पर है छोटे छोटे बच्चे गऊ के और छोटी छोटी बच्चियां, मृग गाव और मृग और गऊए, मृग तो वन में रहते हैं, कभी कभी यह भी देखा जाता है, श्री प्रसिद्ध स्वामी जी कहते हैं कुछ मृग गांव में ही रहते हैं, तो वे और गौ गाव, मृग और गाव गौ आरात दूरात एव वेणु वाद्य हृत चेत स्व वेणु वाद्य न हृतानी चेतांसी जैसा ते वृंद सह प्रतिजुत्थम दंत दष्ट कवला। जैसे पहले कहा गया कि वास्तव में दोनों ओर का वर्णन है, गांव का और वृंदावन का, तो ये मृग गांव और बैल बछड़े आदि वेणु गीत को सुनकर, दूर से ही सुनकर, दुरात आरात का था दुरात एवं सुनकर के वृंद सह प्रतिजुथम दंत दष्ट कवला धृत करना निद्रिता लिखित चित्त निव आसन। वृंद के वृंद झुंड के झुंड कैसे हो जाते हैं, बांसुरी के गीत को सुनते ही जो घास चर रहे थे या चबा रहे थे, बस केवल दंत दष्ट कवला, दांत से पकड़े भर हैं कवल को, घास को चबाए नहीं, न दूसरा चरे और न तो चबाए हुए को खा करके आनंद लेकर के भीतर पेट में किए, नहीं, बांसुरी के गीत में इतना सुख मिल रहा था कि खाना पीना भूल गया। सवेरे सवेरे की लीला है, भूखी गौए भूखे बैल या हरण आदि सब चर रहे हैं, वेणु गीत को सुन करके दंत दष्ट कवला, दंत ही दष्टा एवं नतु चर्बिता कवला तीर्ण ग्रासा जयस्ते, तो तीर्ण के ग्रास मुख में लिए ही रह गए। और वेणु गीत में आया है वर्णन की बछड़े जो गाय का दूध पी रहे थे वो दूध मुख में ही लिए रह गए, भीतर घोटे नहीं, भीतर नहीं, और मां के स्तन के पास केवल मुख ऐसे था और मां का चुचुक भी नहीं पी रहे थे, बस ऐसे जो दूध है चूसे थे उसको तो पी ही नहीं रहे थे, और गौए भी वो दूध तो झरने लगी, बासुरी के गीत को सुनकर के दूध और झरने लगा, तो बछड़े के मुख से सटा हुआ दूध गिर रहा है, नीचे में बछड़ा पी रहा है मुख से। ये दशा हो जाती है वृंद सह झुंड के झुंड गौ इस तरह से, या हरिण बैल सब दांत में तृण ग्रास लिए लिए खड़े रहते थे। कैसे खड़े रहते थे? लिखित चित्रम ही वह, थोड़ा भी स्पंदन नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, जिस दीवार पर लिखित चित्र हो, चित्र बनाया गया तो वो थोड़े डुलता है। कभी कभी लोग झूठे बोल देते हैं कि हमारे ठाकुर जी मुंह चला रहे थे भोग लगाने पर, लेकिन ये सब बातें फालतू होती हैं वास्तव में, है ना। कौन देखा? तो हमारे घर का ही कोई देखा, झूठों का एक गैंग है, और बस हम बने भगत, तुम बनो नहीं, तुम बनो भगवान, हम बने भगत, ठगा करे जगत। मैं ठाकुर जी आज मुंह चला रहे थे तो मैं देखा कि आज उंगली चला रहे थे बांसुरी पर, मदन मोहन जी उंगली चला रहे थे। इधर वर्णन आ रहा है ब्रज में कि जो खड़े थे, जो खा रहे थे, वो भी लिखित चित्र हो गए, और जो वास्तव में लिखित चित्र है, प्रतिमा है, सब खाने पीने लगे, सब बांसुरी बजाने लगे। इस कलयुग में बहुत पाखंड चलता है। दंत दष्ट कवला धृत करणा, कान को ऊंचा करके बांसुरी के गीत को सुन रहे थे सावधान होकर के, जिसे वो रस गिर न जाए थोड़े। धृत करणा, धृत करणा का दूसरा कान धारण करके नहीं, इसी कान को खड़ा करके सुनने लगे। कैसे हो गए? वृंदसह मृग गाव ब्रज वृषा, दंत दष्ट कवला धृत करणा, लिखित चित्रमिव निद्रिता, निद्रिता लिखित चित्रमिव, निद्रित हो गए। निद्रित का अर्थ बस अरे सो जाना नहीं है, निद्रित का अर्थ, निद्रित का अर्थ है और सब खान पान व्यापार छोड़ करके, बोलना हिलना छोड़ करके, और कृष्ण के वेणु गीत को सुनने में मस्त हो गए, और भोजन भी नहीं कर रहे हैं। लिखित चित्रमिव आसन, लगता था कि दीवाल आदि पर बैल आदि का लिखित चित्र है। कभी कभी देखा जाता है हाथी का चित्र बनाते हैं दीवाल पर, तो वो हाथी बेचारा हिलता नहीं, डोलता नहीं, कुछ चाहे बैल गाय घोड़ा, लिखित चित्र जैसे हो। ये आश्चर्य सुनो, सुनता लिखित चित्र निवास, तो यह तो एक नमूना है वास्तव। इस तरह से गोपियां निरंतर कृष्ण के विषय में गान करती रहती। ब्रज में काम धंधा करना उनका उस पर तो ध्यान ही नहीं रहता था, अच्छा कोई गाली दो, कुछ भी करो, कुछ तो पति ऐसे कहते थे बस आज ही घर से निकल जाओ, जाओ नंद बाबा के घर में जाओ, इस तरह से कहा करते थे। जब तुमको कृष्ण से ही मतलब है तो तुम कृष्ण के साथ जाओ। और जा नहीं सकती थी, मनोरथ था कि मैं कृष्ण के साथ हो जाऊंगी, लेकिन इतना कड़ा बंधन है कि वो संभव नहीं था। गोपियां तो निवेदन करती हैं कि हम तो आपकी दासियां हैं और आप समर्थ हैं, विभू हैं, आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप हमें रख सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, रासलीला में लौटा दी। लिखित चित्र की तरह ये हो जाते, और ये एक दिन नहीं, प्रतिदिन की लीला है। प्रतिदिन में भी ऐसा नहीं कि एक टाइम ऐसी बांसुरी बजा दे, वो भी कृष्ण जब देखते हैं कि पशुओं का पेट भर गया तो वो बांसुरी बजाते हैं, चाथवा खाली पेट भी है, भूखे भी है, तब भी बांसुरी के जादू को दिखाने के लिए करामत को बांसुरी बजाते, सब खाना पीना भूल जाते। अभी तो प्रथम कौर चरे हैं घास, तब तक उस ग्रास को लेकर के और खड़े लिखित चित्र की तरह, और लिखित चित्र मतलब स्पंदनहीनता आदि सूचित हो रही है, कान भी नहीं हिल रहा है, कहीं कोई पूछ भी हिल जाए, कार्ड हिल जाए तो लिखित चित्र थोड़ा करेगा। श्री गोपीचंद कह रहे कि लिखित चित्र की तरह ये पशुओं की दशा होती है जब प्रियतम बांसुरी बजाते हैं। धृता उत्तम भीता कर्ण जैसते दंत दष्ट कबला धृत कर्णा है निद्रिता है लिखित चित्र निवास ऐसी दशा हो जाती। तो ये असली आश्चर्य सुनिए, इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है अद्भुत। तो और कथा कही जाए ना, नहीं तो बहुत बाकी रहेगा। तो कोई कोई उच्चार किए तो ठीक 11 बजे प्रसाद हो जाएगा। 11 बजे में तो 5 मिनट कम है, तो ठीक है अब तुमने ग्रास रखे रखे अब खाया जाए, उसके बाद चालू करेंगे। हरे कृष्ण।